धौला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर 13 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं साहुवच्छायिरिये अरहन्ते वन्द्यूणसिद्धेवी जे पञ्चलोकवाले वोच्छं बन्धस्य सामित्तम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें षटखंडागम का जो तृतीय खंड है उसका नाम है बंध स्वामित्व विचय, और यहाँ पर हम आठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 79 पर आ गए। 79। देखो यहाँ बंध के कारणों की चर्चा चल रही है, और बंध संबंधी बंध के स्वामी कौन है, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक बंध होता है, यानी अलग अलग प्रकृतियों को लेकर हमने प्रश्न भी देखे थे। क्या बंध पहले विच्छिन्न होता है, क्या उदय पहले विच्छिन्न होता है, अपने उदय से बनती है कि पर के उदय से बनती है, कौन से गति सहित बनती है, कौन से गति वाले स्वामी है, आदि बहुत सारी बातें हमने देखी थी। अब यहाँ तो बात अपनी तीर्थंकर प्रकृति संबंधी चल रही है, तो तीर्थंकर प्रकृति के बंधक कौन है ऐसा पूछा था, तो चौथे गुणस्थान से लेकर आठवें गुणस्थान के छठवें भाग तक उसके बंधक है, ये बात हमने देखी थी। उसका बंध पहले रुकता है और उदय 13वें-14वें में चलता है, क्योंकि बंधने वाले तो नीचे के गुणस्थान वाले, उदय तो 13वें-14वें में है, और अपने स्वयं के उदय में नहीं बनती। 13वें-14वें वाले को उदय है, वहां उसका बंधन नहीं है, तो परोदय में बनती है, ये उसका अर्थ है। अभी हम यहाँ उसके कारण क्या है उसकी चर्चा चल रही है, जिसको प्रत्यय कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे सम्यक दृष्टि को बनती है, पर सभी सम्यक दृष्टियों को नहीं बनती है, इसलिए कुछ विशेष वहां उनके भावों के निमित्त से इनका बंध हो रहा है। उसकी बातें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने प्राकृत पढ़ा था और हिंदी भी पढ़ना बाकी था, प्राकृत फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। सूत्र 41। दंशन विशुद्ध दाय विनय संपन्न दाय शीलवदेशु निरधिचार दाय आवासेशु अपरिहीन दाय खणलव परिबुज्जन दाय लद्धि संवेग संपन्न दाय जधा थामे तधा तवे साहूणम पासुव परिचागदाय साहूणम समाहि संधारण दाय साहूणम वेज्जावच्च जोग जुत्त दाई अरहंत भत्ति बहुसुद भत्ति पवयन भत्ति पवयन वच्छल दाय पवयन पभावन दाय अभिक्णम अभिक्णम नानोव जोग जुत्त दाय इच्छे देही सोलसे ही कारणे ही जीवा तिथरे नामगोदम कम्मम बंधंती। हिंदी में पढ़ते हैं 41 नंबर का सूत्र, पेज नंबर 79। दर्शन विशुद्धता, विनय संपन्नता, शील व्रतों में निरतिचारता, छह आवश्यकों में अपरिहीनता, क्षणलव प्रतिबोधनता, लब्धि संवेग संपन्नता, यथाशक्ति तप, साधुओं को प्रासुक परित्यागता, साधुओं की समाधि संधारणता, साधुओं की वैयावृत्य योग युक्तता, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रभावनता और अभिक्षण अभिक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता, इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं। गोत्र कहने का प्रयोजन उसके साथ देवगति का, यानी वो तो उच्च गोत्र का ही बंध होता है, देवगति का नहीं कहेंगे, मनुष्यों के लिए देवगति है, देवों के लिए मनुष्य गति बंद रही, उच्च गोत्र का बंद हो रहा है, इसलिए उसको गोत्र के साथ ले लेते हैं, तीर्थंकर गोत्र ऐसा भी कहेंगे। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं वो इस प्रकार है। अभी जो 16 भावना जिसको होंगे ना षोडश कारण भावना, तो उसमें से एक एक का अर्थ बता रहे हैं, वही इस प्रकार है। दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन है, उसकी विशुद्धता का नाम दर्शन विशुद्धता है। उस दर्शन विशुद्धता से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते हैं। तीन मूर्ताओं से रहित, कल हमने इस यहाँ पढ़ा था ना, तीन मूर्ता की बात अपनी चल रही थी, देव संबंधी मूर्ता जिसको देव मूर्ता, गुरु मूर्ता गुरु संबंधी, गुरु के स्वरूप संबंधी मूर्ता, और लोक मूर्ता। लोक में ऐसे कुछ प्रचलित चालें होती है कि ये करने से अपने को सुख होगा, वो करने से ये, ऐसी लोक मूर्ता चलती रहती है। तो कहते तीन मूर्ताओं से रहित और आठ मलों से व्यतिरिक्त, यानी आठ मलों से रहित, कौन से मल है या दोष है आपको मालूम है? नहीं मालूम? हाँ, गुण मालूम हो गए तो दोषों को गिनाएंगे। निशंकित गुण है तो शंका ये दोष है, ये उसका मल है, शंका है, कांक्षा है। अभी निर्विचिकित्सा का बदले विचिकित्सा लिखना, ऐसे ये सारे जो गुण गिना है ना उससे रहित पना, उसको यहाँ मल कहा। तो तीन मूर्ताओं से रहित व आठ मलों से व्यतिरिक्त जो सम्यक दर्शन भाव होता है उसे दर्शन विशुद्धता कहते हैं। शंकाकार पूछते हैं, केवल उस एक दर्शन विशुद्धता से ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कैसे संभव है? क्योंकि ऐसा होने पर सब सम्यक दृष्टियों के तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का प्रसंग आवेगा। यानी सभी सम्यक दृष्टि तो तीन मूर्ता और आठ दोषों से मलों से रहित ही होते हैं। समाधान, इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि शुद्ध नय के अभिप्राय से तीन मूर्ता और आठ मलों से भिन्न जीवों के द्वारा ही दर्शन विशुद्धता नहीं होती, किंतु पूर्वोक्त गुणों से अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर स्थित सम्यक दर्शन के, यानी जो ऑलरेडी ऐसा जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और उसमें और कुछ विशेषताएं होती है, यानी सम्यक दृष्टि तो है ही है पर इसी सम्यक दृष्टि में ये विशेषताएं हैं। यदि सम्यक दर्शन से रहित ये जो आगे साधुओं की भक्ति, जो उसका वैयावृत्ति अर्यंत भक्ति, बिना सम्यक तो अगर कोई कहेगा तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण, तो ये नहीं हो सकता, इतनी बात बतानी है। यानी सम्यक तो मूल कंडीशन है ही है, है ना? तो कहते पूर्वोक्त गुणों से अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर, यानी आत्मा का अनुभव कर स्थित सम्यक दर्शन की साधुओं को प्रासुक परित्याग, साधुओं की समाधि संधारणा, साधुओं की वैयावृत्ति का संयोग, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलता, अपने वचन द्वारा प्रवचन की प्रभावना करना और अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता में प्रवर्तने का नाम विशुद्धता है। दर्शन के साथ विशुद्धता शब्द लगाया ना, उसका ही अर्थ है। उस एक ही दर्शन विशुद्धता से जीव तीर्थंकर कर्म को बांधते हैं। यानी अकेले सम्यक्तों को दर्शन विशुद्ध नहीं कहे, दर्शन के साथ इतनी सब ये जो बातें हैं उसको विशुद्धता नाम दिया है। अथवा अथवा कहकर दूसरी अपेक्षा, क्योंकि अभी जो 16 नाम अलग अलग बताए उसकी बात करेंगे। विनय संपन्नता से ही तीर्थंकर नाम कर्म को बांधते हैं, वही इस प्रकार है ही लगाया, क्योंकि उसमें अभी वही बातें गठित करेंगे। ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय के भेद से विनय तीन प्रकार का है। ये वैनयिक मिथ्या तो बात अलग है, वो तो ऐसा समझने वाले हैं कि सबकी विनय करो उससे से मोक्ष हो जाएगा, राजा की विनय, बच्चों की विनय, माँ बाप की विनय, वो धर्म नहीं है। तो यहाँ तो ये ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय की बात है। उनमें बारंबार ज्ञानोपयोग से युक्त रहने के साथ, यानी बारंबार अपने आत्मा के अनुभव में रहने के साथ, आत्मलीनता के साथ, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति का नाम ज्ञान विनय है। बहुश्रुत ने जो अनेक आगम के धारक जो है, बहुश्रुत उपाध्याय कहते हैं। प्रवचन भक्ति, प्रवचन जो प्रवचन भगवान की वाणी है वो प्रवचन है, उत्कृष्ट वचन है, उसका नाम ज्ञान विनय है। हाँ, पेज नंबर 80 लास्ट पैराग्राफ नीचे से दूसरी लाइन। आगमोपदिष्ट ने आगम में उपदिष्ट ने आगम में उपदेश किया हुआ आगमोपदिष्ट सर्व पदार्थों के श्रद्धान के साथ, आगम में तो 6 द्रव्य बताए हैं, उसका वस्तु स्वरूप बताए हैं, तो उसके श्रद्धान के साथ 3 मूर्ताओं से रहित होना, 8 मलों को छोड़ना, अरहंत भक्ति, सिद्ध भक्ति, क्षणलव प्रतिबुद्धता और लब्धि संवेग संपन्नता को दर्शन विनय कहते हैं। यानी सम्यक तो संबंधी और दृढ़ता हो जाती है, दर्शन विनय कहना उसको। यानी क्षणलव प्रतिबुद्धता एग्जैक्ट अर्थ क्या है उसका, ये तो समय के माप है। वो प्रतिबुद्धता यानी वो तो ज्ञान, यानी विशेष ज्ञान। उसको यहाँ उसमें दूसरा नाम क्या है उसमें क्षणलव प्रतिबुद्धता के लिए, ज्ञानाभ्यास करे मैंने माहिता नहीं। वो संवेग को जो संवेग भाव विस्तार है उसी को लब्धि संवेग कहा, लब्धि संवेग संपन्नता को 85 पर है। क्षणलव प्रत, क्षण और लव ये काल के विशेष है। पेज नंबर 85 लास्ट पैराग्राफ। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत और शील गुणों को उज्जवल करने, मल को धोने अथवा जलाने का नाम प्रतिबोधन और इसके भाव का नाम प्रतिबोधनता। प्रत्येक क्षण व लव में होने वाले प्रतिबोध को क्षणलव प्रतिबुद्धता कहा जाता है। यानी अपने समय दर्शन ज्ञान व्रतशील आदि गुणों को उज्ज्वल करना, ये उसका नाम है, ये अर्थ है। ये सब आने वाले हैं आगे। परंतु उसको हम जो 16 भावना गिनते हैं षोडश कारण में, उसका उसमें नाम कुछ अलग है ना। क्षण लव प्रतिबद्धता उसमें नहीं आई, यहाँ तो सिद्ध भक्ति भी अलग से बताई है ना, उसमें है अरहंत भक्ति सिद्ध भक्ति। आगे पढ़ेंगे अभी हम। हाँ, इसको दर्शन विनय कहते हैं, ये इसकी विस्तार से चर्चा आने वाली है। शील व्रतों में निरतिचारता, आवश्यकों में अपरिहीनता अर्थात परिपूर्णता यानी हीनता नहीं होना, और शक्ति अनुसार तप का नाम चारित्र विनय है। जो हमने अलग अलग जो 16 भावना बताई है उन्हीं को विनय में घटित करके बता रहे हैं। साधुओं के लिए प्रासुक आहार आदि का दान, वो बताए ना प्रासुक परित्याग, साधुओं को प्रासुक परित्याग, उनकी समाधि का धारण करना, उनकी वैयावृत्ति में उपयोग लगाना और प्रवचन वत्सलता, यह ज्ञान दर्शन एवं चारित्र तीनों की ही विनय है। क्योंकि रत्नत्रय समूह को साधु व प्रवचन संज्ञा प्राप्त है, यानी रत्नत्रय के समूह को ही साधु कहा, उसी को प्रवचन भी कहा। इसी कारण चूंकि विनय संपन्नता एक भी होकर 16 अवयवों से सहित है, यहाँ एक एक जो 16 भावना में से एक एक भावना में उसको अकेले में सभी घटित करके बता रहे हैं। दर्शन विशुद्ध में सभी घटित करके बताया, अभी विनय पर हम सबको घटित करके बता रहे। अतः उस एक ही विनय संपन्नता से मनुष्य तीर्थंकर नाम कर्म को बांधते हैं। शंकाकार पूछते, यह विनय संपन्नता देव और नारकियों के कैसे संभव है? क्योंकि वो साधुओं के लिए वो जो दान आदि देना, वैयावृत करना, समाधि वगैरह, तो कहते उक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि देव नारकियों में भी ज्ञान विनय और दर्शन विनय की संभावना देखी जाती है। यानी उनके तो ये चारित्र यानी ऊपर के गुणस्थान है ही नहीं है, फिर भी उनमें तो ज्ञान और दर्शन विनय तो है ही है। शंकाकार पूछते, तीनों विनयों के समूह से सिद्ध होने वाला कार्य दो से ही कैसे सिद्ध हो सकता है? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मट्टी, जल और सूरण कंद से उत्पन्न होने वाला सूरण कंद का अंकुर, वो अ के ऊपर बिंदी देना, कु के ऊपर नहीं, उसके कंद और दुर्दिन अर्थात वर्षा से ही उत्पन्न होता हुआ पाया जाता है, अथवा क्या कहते हैं, यानी सुरन समझते ना, जमीन जमीन के अंदर जमी कंद है ना सुरन नाम का, तो वो तो मिट्टी जल है ना, जमीन के अंदर बोलने पर मिट्टी जल और सुरन कंद से उत्पन्न होता है, वो अंकुर उत्पन्न होता है, परंतु ऐसे रखे रखे भी बरसात के दिनों में उसमें से अंकुर आता है कि नहीं? दो ही कारण, तीन कारण होने चाहिए, मिट्टी भी चाहिए थी, पर बिना मिट्टी के भी वहाँ अंकुर होता है कि नहीं होता? वो तो होता है ना, अभी वो गाजर है ना, वो गाजर बोने पर उसमें से वो आता है, आपने कभी देखा होगा, वो उसका ऐसा पतला नीचे का जो भाग है ना, वो केवल ऐसे पानी में रख दो तो इतने इतने उग जाएगा, वह मिट्टी कहाँ है, बिना मिट्टी के भी उगता है, ये कहना चाहते हैं। तीन के बदले दो ही कारणों से हो जाता है, इतना उनको दृष्टांत देना है। दुर्दिन ने वर्षा से उत्पन्न होता हुआ पाए, हाँ दुर्दिन कहाँ है, अथवा दो घोड़ों से खींचा जाने वाला रथ बलवान एक ही देव विद्याधर या मनुष्य से खींचा गया पाया जाता है, तो मनुष्य भी उसको खींचते हैं, जो भगवान के रथ वगैरह निकलते तो मनुष्य भी उसको खींचते हैं। अब प्रश्नकार फिर पूछते हैं, यदि दो ही विनयों से तीर्थंकर नाम कर्म बांधा जा सकता है तो फिर चारित्र विनय को उसका कारण क्यों कहा जाता है? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञान दर्शन विनय के कार्य का विरोध ही चारित्र विनय नहीं होता। इस बात को सूचित करने के लिए चारित्र विनय को भी कारण मान लिया गया है। अथवा शील व्रतों में निरतिचारता, निरतिचार ने अतिचार से रहितपना, उसी से तीर्थंकर नाम कर्म बांधा जाता है। वह इस प्रकार से हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रह से विरत होने का नाम व्रत है। व्रतों की रक्षा को शील कहते हैं। व्रत और शील बताए ना, ये पांच पापों से रहित विरत होने का नाम व्रत और व्रतों की रक्षा शील। सुरापान, सुरा यानी मदिरा, मांस भक्षण, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद एवं नपुसक वेद, इनके त्याग न करने का नाम अतिचार और इनके विनाश का नाम निरतिचार या संपूर्णता है। इसके भाव को निरतिचारता कहते हैं। शील व्रतों में इस निरतिचारता से तीर्थंकर कर्म का बंद होता है। अब जैसे हर एक में 15-15 भावना घटित की, तो ये प्रश्न पूछते हैं, इसमें शेष 15 भावनाओं की संभावना कैसे हो सकती है? यह ठीक नहीं, क्योंकि, यानी ऐसा प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि क्षणलव प्रतिबुद्धता, लब्धि संवेग संपन्नता, साधु समाधि धारण, वैयावृत्य योग युक्तता, वो वही करना, वया हुआ है, प्रासुक परित्याग, कौमा लगाना, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति और प्रवचन प्रभावना लक्षण शुद्धि से युक्त सम्यक दर्शन के बिना, यानी ऐसे ये लक्षणों से युक्त ऐसा जो सम्यक दर्शन है उसके बिना शील व्रतों की निरतिचारता बन नहीं सकती। यानी ये सब बातों के सहित सम्यक दर्शन लिया। दूसरी बात, जो असंख्यात गुणित श्रेणी से कर्म निर्जरा का कारण है वही व्रत है। व्रत किसको कहा? असंख्यात गुण श्रेणी से कर्म निर्जरा का कारण, उसको व्रत कहा। तो मिथ्या दृष्टि को असंख्यात गुण निर्जरा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, तो उसके व्रत है कि नहीं है? उसमें मुख्यतः तो अंतरंग में स्थिरता है। और सम्यक दर्शन के बिना हिंसा असत्य चौर्य ब्रह्म और परिग्रह से विरत होने मात्र से गुणश्रेणी निर्जरा हो नहीं सकती। क्या लिखना? स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्योंकि दोनों से ही उत्पन्न होने वाले कार्य की उनमें से एक के द्वारा उत्पत्ति का विरोध है। यानी सम्य दर्शन के बिना तो निर्जरा ऐसी असंख्यात गुणी होती नहीं। शंका, इनकी संभावना यहां भले ही हो, किसमें? शील व्रतों में निरतिचार में घटित कर रहे, पर ज्ञान विनय की संभावना नहीं हो सकती। शील और व्रत जो उसका जो निरतिचार से पालन हो रहा है उसमें ज्ञान विनय कैसे हो सकती है? उसका समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि छह द्रव्य और नौ पदार्थों के समूह और त्रिभुवन को विषय करने वाले एवं बार बार उपयोग विषय को प्राप्त होने वाले ज्ञान विनय से बिना शील व्रतों के कारणभूत सम्य दर्शन की उत्पत्ति नहीं बन सकती। क्या कहा? ज्ञान विनय के बिना शील व्रतों के कारणभूत सम्य दर्शन की उत्पत्ति नहीं मिलती। यानी ज्ञान विनय के बिना सम्य दर्शन नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन के बिना शील व्रतों में अनिरतिचारता होती नहीं। और ज्ञान विनय के लिए कैसे होता है? ज्ञान विनय छह द्रव्य नौ पदार्थ त्रिभुवन को विषय करने वाले, ये भूगोल जानने से क्या फायदा है? त्रिभुवन को विषय करने वाले एवं बार बार उपयोग विषय को प्राप्त होने वाले। उपयोग विषय ने उपयोग को ही वो विषय बना रहे ना, ज्ञान ज्ञान को यानी आत्मा के अनुभव में लीनता करने वाले, ऐसे ज्ञान विनय से रहित क्या सम्य दर्शन नहीं हो सकता? सम्य दर्शन नहीं है तो शील व्रतों में निरतिचारता नहीं होगी। ये तो ज्ञान के बिना तो होगा ही नहीं। पहले तो हम आगम के द्वारा छह पदार्थ नौ ये छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ पंचाशी का जो कोई उनका विस्तार से स्वरूप जान लेते हैं और फिर बारंबार अपने आप को विषय बनाते हैं, आत्मा में लीनता होते, आत्मा का अनुभव होता है, तभी सम्य दर्शन होगा। शील व्रत विषयक निरतिचारता में चारित्र विनय का भी अभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यथाशक्ति तप आवश्यक अपरिहीनता और प्रवचन वत्सलता लक्षण चारित्र विनय के बिना शील व्रत विषयक निरतिचारता की उपपत्ति ही नहीं बनती। क्योंकि ऐसे इतनी स्थिरता जो चारित्र मुनि योग्य जो है उसके बिना शील व्रतों में निरतिचारता बन ही नहीं सकती है। क्योंकि वो शील व्रतों में हमने कितना कितना सब क्रोध मान माया लोभ हासरति सब सबको लिया था, तो उसका त्याग करना वो है निरतिचारता। इस कारण यह तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का तीसरा कारण है। अब आवश्यकों में अपरिहीनता से ही तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। समता स्तव ये छह आवश्यक बता रहे, समता स्तव वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान स्तव होता है स्तव शब्द आता है वो स्तवन यानी हमने वो गायन बनाया वो नहीं है, स्तव यानी वो स्तुति आती है ना। देखो समता स्तव वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और उत्सर्ग के भेद से छह आवश्यक होते हैं। समता किसको कहना? शत्रु मित्र मणि पाषाण, मणि यानी वो रत्नादि, पाषाण और सुवर्ण मृत्तिका में राग द्वेष के अभाव को समता कहते हैं। यानी उसमें कोई हाँ हाँ ये कितना कीमती है ये क्या, अरे वो तो पुद्गल है, उसमें क्या है, सोना क्या और धूल क्या, स्वामी जी कितने, ये सब धूल है, वैभव को धूल कहते थे ना। अतीत अनागत और वर्तमान काल विषयक पांच परमेष्ठियों के भेद को न करके अरहंतों को नमस्कार, जिनों को नमस्कार इत्यादि द्रव्यार्थिक निबंधन नमस्कार का नाम स्तव है। देखो स्तव कहा ना, क्या कहा, तीनों काल को विषय यानी त्रिकालवर्ती सबको नमस्कार। किसको? अरिहंत कहने से कौन कौन आ गए उसमें? पांचों परमेष्ठी आ गए। भेद नहीं करते हुए अरिहंत कहने से उसमें पांचों परमेष्ठी आ जाते, इसलिए अरिहंतों को नमो अरिहंतानम कहने से सब पांचों परमेष्ठी उसमें गर्भित है और वो त्रिकालवर्ती। इत्यादि द्रव्यार्थिक निबंधन नमस्कार का नाम स्तव है। एक भेद सभी उसमें गर्भित कर दिए ना, उसको द्रव्यार्थिक कह दिया। बोलो उसमें, बोलो
द्रव्यार्थिक निबंधक कोई क्वेश्चन
था मेरा। द्रव्यार्थिक निबंधन यानी द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से जो बताया है यानी उसमें वो पंच परमेष्ठी के भेद भी नहीं किए, सबको अरहंत में कह दिया। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व चंद्रप्रभ पुष्पदंत शीतल श्रेयांश वासुपूज विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अर मल्ली मुनिसूरत नमी नेमी पार्श्व और वर्धमानादि तीर्थंकर, ये 24 तीर्थंकर हो गए है ना, तथा भरतादिक केवली। ये भरतादिक केवली ने कौन? हाँ वो भरत केवली हुए थे ना, वो चक्रवर्ती थे पहले, बाद में मुनि होकर केवल ज्ञानी हो गए ना, यानी सामान्य केवल की भरतादि सबको ले लिया। भरतादि केवली आचार्य एवं चैत्यालयादिकों के भेद को करके, देखो पहले क्या नमो अरिहंतानम कहने से कोई भेद किए ने सब उसमें आ गए गर्भित हो गए, उसको स्तव कह दिया। अभी 24 तीर्थंकरों में 24 के भेद नाम लेके 24 अलग अलग बताए, केवलियों में भरतादि कहने से अलग अलग केवली वो हो जाते हैं, इतने सारे आचार्य हो गए हैं, फिर चैत्यालयादिकों के भेद को करके अथवा गुणगत भेद के आश्रित यानी उनमें विशेषताएं कुछ है उसके आश्रित, शब्द कलाप से यानी अपने वचनों से यानी हम स्तुतियां बनाकर, शब्द कलाप यानी क्या है, हम भगवान वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं ना, वो है ये बात। व्याप्त गुणानु स्मरण रूप नमस्कार करने को वंदना कहते हैं यानी इसके द्वारा उनके गुणों का स्मरण करते हैं उसको वंदना कहते हैं, यानी जो हम शब्द बोलकर भगवान के नाम लेकर जो कुछ कह रहे हैं जिसको हम स्तवन कह रहे हैं वो तो ये वंदन में आ गए सारे, वंदना एक्चुअली वंदन भी नहीं वंदना, यानी वंदना करना है ना उनके सब भेद करके उनको नमस्कार करना है। 84 लाख गुणों के समूह से संयुक्त पंच महाव्रतों में उत्पन्न हुए मल को धोने का नाम प्रतिक्रमण है। पंच महाव्रत में जो दोष लगते हैं वो धोना है ना, वो नष्ट करना, वो है प्रतिक्रमण। महाव्रतों के विनाश वो उत्तर गुण कहते हैं ना, 84 लाख उत्तर गुण। देखो यहाँ नीचे नीचे दिखा है ना, पांच नंबर का फुटनोट, दवे खेते काले भावेय कशावराह सोहणयम निंदन ग्रहण जुत्तो मनवच कायन पड़िकम। वो प्रतिक्रमण के भेद उन्होंने बताए। चौरासी लाख याद है क्या? हाँ, उत्तर गुण कहते हैं ना, चौरासी लाख उत्तर गुण आपको मिलेगा क्या उसमें? चौरासी लाख वो तो 18,000 सील के लिए, वो तो हमने चेतन श्री अचेतन श्री वगैरह उसमें तो हमने देखे थे। हाँ हाँ, चौरासी लाख उत्तर गुण जिसको कहेंगे गुण, हाँ उन्हीं के होते हैं, क्योंकि 84 लाख गुणों से के समूह से युक्त पंच महाव्रत, ये उसमें दस धर्म वगैरह सब लेते हैं ना। मिलेगा भी, अरविंद भी देख रहे हैं। नहीं है गुण में नहीं है। ओ उत्तर गुण में लिख होगा शायद, वो पांचवी में जो इंडेक्स वाला बुक एक है उसमें कौन से बुक में वो मिलेगा वो आता है, वो सिल्वर कलर का है उसमें ऊपर होगा शायद उत्तर गुण। एक पुस्तक खान बनाई है उसमें वो शब्द देखना उसके कौन से बुक में वो मिलेगा वो लिखा है। है क्या? चलो आगे तब तक पढ़ते। मैंने भी कहीं लिखा है 84 लाख उत्तर गुण, मेरे ख्याल से जीव कांड में कहीं मैंने लिख के रखा है। नहीं अभी उसमें है क्या? वो ढूंढारी में है, मुझे वो भी मुझे याद नहीं, नहीं मिला। चलो कल देखेंगे। ना योनी अलग बात है, ये 84 लाख उत्तर गुण कहते हैं उसको, मूल गुण 28 उत्तर गुण ये इतने होते हैं। संयम प्रकाश में भी पता नहीं 84 लाख, क्योंकि 84 ने 21 में कैसे 84 किए, नहीं नहीं होते ना उसके। नहीं नहीं मैंने लिखा था कहीं ना कहीं, मुझे लिख के रखा था पहले मैंने, और उसमें वो 10 धर्म भी आते हैं इतना मुझे याद है। नहीं नहीं वो अलग बात है, देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये महाव्रत कैसे तो 84 लाख गुणों के समूह से युक्त है, मूल गुण हम 28 कहते हैं है ना, और ये सारे उसके भेदों के भेदों के भेद कहते हैं सारे। महाव्रतों के विनाश अभी 85 पेज पर है, वो मलोत्पादन के कारण जिस प्रकार न होंगे वैसा करता है, वैसा करता हूं। क्या कहते हैं? यानी महाव्रतों का विनाश जैसा नहीं हो वैसा करना, महाव्रतों में मलोत्पादन यानी मल का उत्पत्ति होना जिस प्रकार न हो वैसा करता हूं, ऐसी मन से आलोचना करके 84 लाख व्रतों की शुद्धि के प्रतिग्रह का नाम प्रत्याख्यान है। इन्हें आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण सब इसमें ले रहे हैं। प्रतिग्रह करना है उसका संकल्प बनाना, वो है प्रत्याख्यान, जिसको हम कहते हैं ना प्रत्याख्यान बचखान लीधा ऐसे कहते, वही शरीर और विक्षयक अशुभ मन एवं वचन की प्रवृत्तियों को हटाकर ध्येय वस्तु की ओर एकाग्रता से चित्त का निरोध करने को व्युत्सर्ग कहते हैं, यानी अन्य विकल्प त्याग कर शरीर का और विकल्पों का लक्ष्य छोड़कर मन वचन की प्रवृत्तियों को हटाकर ध्येय रूप पशु कौन है, मैं स्वयं चिदानंद स्वरूप, उसकी ओर एकाग्रता से चित्त का निरोध करने को व्युत्सर्ग कहते हैं। इन छह आवश्यकों की अपरिहीनता अर्थात अखंडता का नाम आवश्यक अपरिहीनता है। कौन कौन से देखे थे हमने, याद है ना, समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और विसर्ग। वो प्रत्याख्यान में वो आलोचना पूर्वक ही वो प्रत्याख्यान कर देता है, इस तरह से उसी में वो ले लिए उन्होंने। उस एक ही आवश्यक अपरिहीनता से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। इसमें शेष कारणों का अभाव भी नहीं है, क्योंकि दर्शन विशुद्धि, विनय संपत्ति यानी संपन्नता, व्रतशील निरतिचारता, क्षणलव प्रतिबोध, लब्धि संवेग संपत्ति, यथाशक्ति तप, साधु समाधि संधारण, वैयावृत्ति योग, प्रासुक परित्याग, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रभावना और अभीक्षण ज्ञानोपयुक्तता, इनके बिना छह आवश्यकों में निरतिचारता संभव ही नहीं है। इस कारण यह तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का चतुर्थ कारण है। अब पांचवा कारण बता रहे, क्षणलव प्रतिबुद्धता से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। एक एक से कैसे बनता है, उसमें अन्य कैसे गर्भित है, उसकी चर्चा है। क्षण और लव ये काल विशेष के नाम है। समय दर्शन, ज्ञान, व्रत और शील गुणों को उज्जवल करने, मल को धोने अथवा जलाने का नाम प्रतिबोधन, और इसके भाव का नाम प्रतिबोधनता। ऐसे प्रतिबोध हुआ है ना, वो तो ज्ञान के लिए है, परंतु यहाँ प्रतिबोधन शब्द जो आया है वो तो समय दर्शन, ज्ञान, व्रत, शील, उनको उज्जवल करना, मल को निकाल देना, उसका नाम है क्षण लव प्रतिबुद्धता, प्रतिबोधन। प्रत्येक क्षण व लव में होने वाले प्रतिबोधन को क्षण लव प्रतिबुद्धता कहा जाता है, यानी प्रति समय प्रति क्षण ये उसकी उज्ज्वलता बनी रहती है, बढ़ती चली जाती है। उस एक ही क्षण लव प्रतिबुद्धता से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। इसमें भी पूर्व के समान शेष कारणों का अंतर्भाव दिखलाना चाहिए। एक ज्ञानाभ्यास आता है, वो होता है क्या, ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महान, फिर जो संवेग भाव विस्तार है, वो अभीक्षण ज्ञान उपयोग अलग है, ये ज्ञानाभ्यास केवल अलग है, वही होना चाहिए। यानी प्रति समय वो ज्ञानाभ्यास चलता रहता है ना, क्योंकि उसके बाद संवेग लिया उन्होंने, ज्ञानाभ्यास को पकड़ के 16 होते हैं ना, क्या नहीं, हा? पूजा के पुस्तक में है ये, यहाँ वो ड्रॉअर में भी है पूजा की पुस्तकें, वो संवेग तो है ही, लब्धि संवेग संबंध तो यहाँ पर भी लिया है। त्याच्यामध्ये नाही आहे, हे वेगळ्या पूजा आहेत, ये दुसरं फाटक्या पुस्तकात आहे किंवा मग ते वहां पर दुसरी पुस्तक आहे ना, कौन सी, जिनेंद्र अर्चना, वो मुझे दे ना, एकदम फटे पुस्तक है वो मैं ही देखूंगी। हाँ, हाँ, 79 पर आई थी ना, दर्श विशुद्धि है वही है दर्श विशुद्धि धरे जो कही ना, विनय महाधरे, शील सदा दृढ़, ज्ञानाभ्यास करे मन माई, चौथे नंबर पर वही लिया है ना उन्होंने। और फिर जो संवेग भाव दान दे ये, उसमें उन्होंने यहाँ परित्याग कहा, प्रासुक परित्याग, जो तप तपे साधु समाधि वैयावृत्य अरंत भक्ति आचार्य भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति षट आवश्यक काल जो साधे सोही रत्नत्रय, और धर्म प्रभावने प्रभावना और वात्सल्य, यह वात्सल्य और साधु सिद्ध भक्ति भी कहाँ लिखी है वहां पर, अरहंत में सब आ जाते हैं। ये मैंने बोला ना ज्ञानाभ्यास, वही वो शिक्षण लव प्रतिबुद्धता है। देखो दर्श विशुद्धि विनय शील सदा यानी ज्ञानाभ्यास संवेग भाव दान दे वगैरह तप तपे साधु समाधि वैयावृत्य अरहंत भक्ति आचार्य भक्ति बहुश्रुत भक्ति षट आवश्यक धर्म प्रभाव और वत्सल। अभीक्षण ज्ञान उपयोग अलग नहीं लिया उन्होंने। अच्छा उन्होंने आचार्य भक्ति नहीं लिया, आचार्य वैयावृत्य वगैरह सब लिए। आचार्य भक्ति को अलग नहीं लिया, उसी को अलग अलग थोड़ा नाम चेंज करके अरहंत भक्ति में उन्होंने सबको ले लिया था। अभी पेज नंबर 86 पर आए हम। एक क्षण लव प्रतिबुद्धता हो गई थी अपनी, अभी लब्धि संवेग संपन्नता से तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। समय दर्शन समय ज्ञान और सम्यक चारित्र में जो जीव का समागम होता है उसे लब्धि कहते हैं, यानी जीव को वो प्राप्ति हुई। और हर्ष और संतोष नाम संवेग है, लब्धि से या लब्धि में संवेग का नाम लब्धि संवेग है, और उसकी संपन्नता का अर्थ संप्राप्ति है। इस एक ही लब्धि संवेग संपन्नता से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, यानी उसमें हर्ष है ना देव गुरु शास्त्र के प्रति या जो धर्म के प्रति या यहाँ रत्नत्रय के लिए उसके प्रति अनुराग जो है अहोभाव है हर्ष जो परिणाम है उसको यहाँ संवेग कह दिया। शंका क्या क्या क्या, प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व तीर्थंकर प्रकृति का बंध। हाँ एक साथ कैसे होगा, ऑप्शन सम्यक्त्व शुरू होने के बाद होगा। शायिक को होता है जैसे वेदक को भी होता है ना, अभी वो दूसरे तीसरे नरक में जाने वाले क्या है वेदक है, औपशमिक वाले को भी होता है, परंतु उपशम सम्यक तो के उसी समय होता है कि इनका प्रश्न हो नहीं सकता। हाँ देखो शंकाकार पूछते हैं लब्धि संवेग संपदा में शेष कारणों की संभावना कैसे है। समाधान, क्योंकि शेष कारणों के बिना विरुद्ध होने से यानी अन्य कारण नहीं होगा तो ये इसके विरोध में चले जाएंगे, लब्धि संवेग की संपदा का संयोग ही नहीं हो सकता, यानी अन्य कारणों के बिना इसका हो नहीं सकता। इसका कारण यह है कि रत्नत्रय जनित हर्ष का नाम लब्धि संवेग है। हाँ ये पैसा वैभव का हर्ष वो नहीं लेना है, वो विशिष्ट आह्लाद है ना, रत्नत्रय जनित हर्ष का नाम लब्धि संवेग है, और वह दर्शन विशुद्धता अधिकों के बिना संपूर्ण होता नहीं है, क्योंकि जहाँ समय दर्शन नहीं है, दर्शन विशुद्धि नहीं, वहाँ रत्नत्र ही नहीं है, तो उसके संवेग कैसे होगा, ये कह रहे हैं। क्योंकि इसमें हिरण्य सुवर्ण आदिकों के बिना धनाढ्य होने के समान विरोध है। यानी वो धनाढ्य है परंतु उसके पास हिरण्य सुवर्ण आदि नहीं है, ऐसा मानना है। अतएव शेष कारणों के अपने अंतर्गत, हिरण्य का भी अर्थ तो वही होता है ना, नहीं हिरण्य ने हीरे हो गए, हिरण्य गर्भ जो कहते हैं, हीरे सोना ऐसा है, यानी जड़ जवाहर जिसको जवाहर है सोना जो वगैरह। अतएव शेष कारणों के अपने अंतर्गत करने वाली लब्धि संवेग संपदा तीर्थंकर कर्म बंध का छठा कारण है। वो हिरण्य गर्भ नाम सुना है कि नहीं सुना, किसको कहते हिरण्य गर्भ? हिरण्य गर्भ अन्यमति तो उनके देवों का वही कहते हैं, पर हम तीर्थंकर को कहेंगे ना हिरण्य गर्भ, वो गर्भ में आते तो रत्नों की वर्षा होती है ना, इसलिए उनको हिरण्य गर्भ कहते हैं। 6 महीने तक होती है ना वर्षा। हाँ वही मैं कब से हमेशा कहती हूँ मैं, वो तो जैसे रत्न वगैरह जो सच्चे होते हैं वैसे समोषण की भी रचना होगी, वो वैकृत शरीर से थोड़ी होगी, बिल्कुल नहीं होगी, वो तो शरीर से, तो शरीर से बिल्कुल पुद्गल में से बनाते, वो तो एक नीलमणि से बनाते, ऐसे हमने देखा था इसमें कहीं। मैं तो हमेशा कहती हूँ, तो ऐसे मजाक में कह देते वैकृत शरीर से वो नीचे के आसन चेंज हो जाती है, ऐसी हुई ये बात गलत है। लोग हमको प्रश्न पूछते फोन करके, ऐसे ऐसे हमने सुना, सीढ़ी में सुना, अभी क्या करें। हाँ ऐसा भी कहते ना, तो माला मुरझाती है तो उनकी आंखों की रोशनी कम होती है, पता है मुझे आंखों की, उनको कैटरेक्ट होता है क्या क्या होता है। अरे पर अपनी माला मुरझाती, दूसरों की नहीं दिखती मुरझाती हुई, ख्याल में। और उनके तो सप्त धातु रहित है, उनके कोई वहां तो अंदर कैटरेक्ट वगैरह नहीं होता है। हाँ देखो नीचे का पैराग्राफ पेज नंबर 86, शक्ति अनुसार तप से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। बल वीर्य और थाम यानी स्थामन, ये समानार्थ शब्द है, जहां थामे तथा तहां लवे, ऐसा ऊपर आया था, देखो थाम। तब दो प्रकार है, बाह्य और अभ्यंतर। इनमें अनुशनादिक का नाम बाह्य तप और विनयादिक का नाम आभ्यंतर तप है। 6 बाह्य और एवं 6 अभ्यंतर इस प्रकार मिलकर सब 12 प्रकार के हैं। जैसा बल हो वैसा तप करने पर तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। इसका कारण यह है कि यथाशक्ति तप में तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के सभी शेष कारण संभव है, क्योंकि यथा थाम यानी यथाशक्ति, शक्ति अनुसार तप ज्ञान और बल से दर्शन सामान्य बलवान और धीर व्यक्ति के होता है, और इसलिए उसमें दर्शन विशुद्धता दिकों का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर यथा थाम तप बन नहीं सकता, यानी बिना दर्शन विशुद्ध आदि के वो बन नहीं सकता। इस कारण यह तीर्थंकर नाम कर्म बंध का 7वां कारण है। आगे 8वें, साधुओं के द्वारा विहित प्रासुक अर्थात निरवध्य ज्ञान दर्शनादि के त्याग से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, वीरति और क्षायिक सम्यक्त्वादि गुणों के जो साधक है वे साधु कहलाते हैं। जिससे आश्रव दूर हो गए उसका नाम प्रासुक है। प्रासुक का अर्थ है जिससे आश्रव दूर हो गए, अथवा जो निरवध्य है उसका नाम प्रासुक है। और वे क्या है? वे ज्ञान, दर्शन व चारित्रादिक ही है। उनके परित्याग अर्थात विसर्जन करने को प्रासुक परित्याग और इसके भाव को प्रासुक परित्यागता कहते हैं। अर्थात दया बुद्धि से साधुओं द्वारा किए जाने वाले ज्ञान, दर्शन व चारित्र के परित्याग या दान का नाम प्रासुक परित्यागता है। वो परित्याग इन्हें छोड़ देना, वो नहीं, दान की बात है। यह कारण गृहस्थों में संभव नहीं है क्योंकि उनमें चारित्र का अभाव है। देखो, चारित्र का अभाव कहने से वो सम्यक चारित्र नहीं है ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है। जिसको संयम नाम देते हैं ऐसा चारित्र नहीं होता, क्योंकि चौथा गुणस्थान वाला संयमी है, इसकी बात है। रत्नत्रय का उपदेश भी गृहस्थों में संभव नहीं है क्योंकि दृष्टिवादादिक उपरिम श्रुत के उपदेश देने में उनका अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं? ये बारवा जो अंग है उसका नाम है दृष्टिवाद, दृष्टिवाद अंग। ये उपरिम श्रुत है, उसका उपदेश देने में उनका अधिकार नहीं है क्योंकि जिन्होंने स्वयं प्रकट किया वही उसके उपदेश देने में समर्थ होंगे, जो द्वादशांग के धारी वगैरह हैं। अतएव यह कारण महर्षियों के ही होता है, महाऋषियों के ही होता है। इसमें शेष कारणों की असंभावना नहीं है क्योंकि अरहंतादिकों में भक्ति से रहित, नौ पदार्थ विषयक श्रद्धा से उन्मुक्त, सातिचार शील व्रतों से सहित और आवश्यकों की हीनता से संयुक्त होने पर निरवध्य ज्ञान, दर्शन व चारित्र का परित्याग हो विरोध होने से संभव ही नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? यानी जिनमें जो अन्य बातें नहीं है, यानी अरिंदादि के भक्ति से रहित है, जो नौ पदार्थों की जिसको श्रद्धा नहीं है, जो शील व्रतों में अतिचार जिसके लगते हैं, जो आवश्यक, जो छह आवश्यक है उसमें कुछ हीन हो रहे हैं, तो ऐसे जीवों के निर्वध्य ज्ञान, दर्शन, चारित्र का दान नहीं हो सकता। इसी कारण यह तीर्थंकर नाम कर्म बंध का आठवां कारण है। दान परित्याग करते दान, अभी ऊपर बात आई थी ना, यानी जिनमें इतने दोष है वो कैसा उसका दान करेगा? हाँ, प्रासुक परित्याग का एक कारण है ना तीर्थंकर प्रकृति का। पहले उन्होंने उस साधुओं को आहार आदि दान देना उसको लिया था, यानी यहाँ दान के अर्थ में ले उसका दान करना, यानी उसका उपदेश देना उसका दान करना। दान यानी कुछ देने ही देने के, हम तो पैसा दिया तो कुछ दिया और कुछ लिया ऐसा लेते हैं। अब आते हैं 88 पृष्ठ पर, साधुओं की समाधि संधारणता से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। दर्शन, ज्ञान व चारित्र में सम्यक अवस्थान का नाम समाधि है। सम्यक अवस्था ने उसी में एकाग्र हो जाना। सम्यक प्रकार से धारण या साधन का नाम संधारण है। वो संधारा कहते ना, यानी सल देखना वगैरह, उस अर्थ में समाधि का संधारण, समाधि संधारण और उसके भाव का नाम समाधि संधारणता है। उससे तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। किसी भी कारण से गिरती हुई समाधि को देखकर सम्य दृष्टि प्रवचन वत्सल चल रह गया, प्रवचन प्रभावक, विनय संपन्न, शील व्रताति चार वर्जित और अहंतादिकों में भक्तिमान होकर चूंकि उसे धारण करता है इसीलिए वह समाधि संधारण है। शंका, यह कहां से जाना जाता है? यह समधारण पद में किए गए सम शब्द के प्रयोग से जाना जाता है। इस समाधि संधारण से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है, यह अभिप्राय है। इसमें शेष कारणों का अभाव नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व वहां दिखला ही चुके हैं। इस प्रकार यह नौवां कारण है। अब 10 नंबर, साधुओं की वैयावृत्ति योग युक्तता से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। व्यापृत अर्थात रोगादि से व्याकुल साधु के विषय में जो किया जाता है, वो जाता है करो, उसका नाम वैयावृत्य है। वैय हुआ वैया करना। जिस सम्यक्त्व ज्ञान अरहंत भक्ति बहुशत भक्ति एवं प्रवचन वत्सलत्वादि से जीव वैयावृत्य में लगता है, वह वैयावृत्य योग अर्थात दर्शन विशुद्धादि गुण है, उनसे संयुक्त होने का नाम वैयावृत्य योग युक्तता है। वो वही बराबर करना और युक्ता लिखा है, युक्तता लिखना उसको। इस प्रकार उस एक ही वैयावृत्ति योग युक्तता से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। यहाँ शेष कारणों का यथासंभव अंतर्भाव कहना चाहिए, इस प्रकार यह 10वां कारण है। 11वां, अरहंत भक्ति से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। जिन्होंने घाती कर्मों के कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान में स्थित शब्द डालो दो, केवल नाने ठिद सौवट्ठा है ना, ने केवल ज्ञान में स्थित संपूर्ण पदार्थों को देख लिया है, वे अरहंत हैं। अथवा आठों कर्मों को दूर कर देने वाले और घातिया कर्मों को नष्ट कर देने वालों का नाम अरहंत है, क्योंकि कर्म शत्रु के विनाश के प्रति दोनों में कोई भेद नहीं है। अर्थात अरहंत शब्द का अर्थ चूंकि कर्म शत्रु को नष्ट करने वाला है, अतएव जिस प्रकार चार घातिया कर्मों को नष्ट कर देने वाले सयोगी और अयोगी जिन अरहंत शब्द के वाच्य है, उसी प्रकार आठों कर्मों को नष्ट कर देने वाले सिद्ध भी अरहंत शब्द के वाच्य हो सकते हैं, क्योंकि निरुक्ति अर्थ की अपेक्षा दोनों में कोई भेद नहीं। क्या कहते हैं, अरहंत शब्द तैयार कैसा हुआ, अर कहो या अरी कहो, तो कहते ये तो कर्म शत्रु को नाश कर दिया उन्होंने। और ये बात तो सिद्धों में भी घटित होती है, जिनको महरिहंत सिद्ध जुदे जुदे कहते हैं, तो अरहंत ये शब्द दोनों पर लागू होता है, क्योंकि शब्द कैसे बना उसको कहेंगे निरुक्ति अर्थ क्या है उस अपेक्षा से देखेंगे, तो दोनों ही कर्म शत्रु को नाश करने वाले हैं। उन अरहंतों में जो गुणानुराग रूप भक्ति होती है, इसलिए उसमें वो सिद्ध भक्ति वो सब घटित हो गए, वही अरहंत भक्ति कहलाती है। इस अरहंत भक्ति से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। शंकाकार पूछते हैं, इसमें शेष कारणों की संभावना कैसे है? इस शंका का उत्तर देते हैं कि अरहंत के द्वारा उपदिष्ट ने उपदेशित अनुष्ठान के अनुकूल प्रवृत्ति करने, यानी उन्होंने जो कुछ आचार आदि बताए हैं उसके अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठान के स्पर्श को अरहंत भक्ति कहते हैं। अरहंत की भक्ति ने केवल गा गा कर भक्ति करना वो भक्ति नहीं कहा, उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलने को अरहंत भक्ति कहा। यहाँ लिखा ना उसके अनुकूल प्रवृत्ति करने को, और यह दर्शन विशुद्धता देखों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में विरोध है। उन्होंने तो इसीलिए उपदेश दिया कि जीव रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष प्रकट करे, तो उन्होंने जो उपदेश दिया उसके अनुसार मोक्ष मार्ग चालू करेंगे तो हमारे अरहंत भक्ति कहलाएगी। अतएव यह तीर्थंकर कर्मबंध का 11वां कारण है। यह हो गया। अब 12 नंबर का, बहुश्रुत भक्ति से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है जो 12 अंगों के पारगामी है। पारगामी यानी उसके ज्ञात यानी अच्छी तरह से विशारद उसमें, हाँ एक्सपर्ट, वे बहुश्रुत कहे जाते हैं। उनके द्वारा उपदिष्ट आगमार्थ के अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठान के स्पर्श करने को बहुश्रुत भक्ति कहते हैं। उससे भी तीर्थंकर नाम कर्म बनता है क्योंकि यह भी दर्शन विशुद्धतादिक शेष कारणों के बिना संभव नहीं है। यह तीर्थंकर नाम कर्म बंध का 12वां कारण है। अब 13 नंबर, पेज नंबर 90, प्रवचन भक्ति से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। सिद्धांत अर्थात 12 अंगों को प्रवचन कहते हैं। ये 12 अंगों को मिलकर शब्द है सिद्धांत। प्रवचन भक्ति बात आई ना, वे स्वयं प्रकृष्ट हैं। प्रकृष्ट हम कहें उत्कृष्ट, वो प्र विशेष, अथवा प्रकृष्ट जो सर्वज्ञ उनके वचन प्रवचन है। क्या कहते हैं, 12 अंगों को भी प्रवचन कहा और वे स्वयं उत्कृष्ट होते हैं, या उत्कृष्ट ऐसे प्रकृष्ट ऐसे जो सर्वज्ञ भगवान उनके वचन को भी प्रवचन कहते हैं। ऐसी व्युत्पत्ति है। उस प्रवचन में कहे हुए अर्थ का अनुष्ठान करना, यह प्रवचन में भक्ति कही जाती है। उस अनुसार हमारा प्रवर्तन होना, यह उसकी भक्ति कहलाएगी। ये तो हमने भक्ति कहने से बस नमस्कार करना, माथा टेकना, कुछ गीत गाना, उसी को भक्ति कह दिया है ना। इसके बिना अन्य प्रकार से प्रवचन में भक्ति संभव नहीं है। क्योंकि असंपूर्ण में संपूर्ण व्यवहार का विरोध है। यानी ऐसा जिसने किया नहीं है, उसमें बताए हुए अर्थ का अनुष्ठान नहीं किया है, तो उसको वो भक्ति भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने वो उसका सही मायने में वो तो भक्ति कहलाएगी नहीं उसको। इस प्रवचन भक्ति से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है, इसमें शेष कारणों का अंतर्भाव कहना चाहिए। इस प्रकार यह 13वां कारण है। अभी 14 नंबर, प्रवचन वत्सलता से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। सिद्धांत या 12 अंगों का नाम प्रवचन है। इसमें होने वाले देशव्रति, महाव्रति और असंयत समय दृष्टि प्रवचन कहे जाते हैं। देखो, सम्यक दृष्टियों को भी यहाँ प्रवचन कहा। देशव्रति, महाव्रति और असंयत सम्यक दृष्टि इक्वल टू प्रवचन, उनमें भक्ति ऐसा भी है, उसमें वत्सलता। फिर से, इसमें होने वाले देशव्रति, महाव्रति और असंयत सम्यक दृष्टि प्रवचन कहे जाते हैं। शंकाकार, इसमें आकार का श्रवण क्यों नहीं होता, अर्थात प्रवचन में होने वाले, इस विग्रह के अनुसार प्रावचन होना चाहिए न कि प्रवचन। समझ में आते हैं बात। उसका समाधान, अ आ ई ई ऊ ऊ ये 6 स्वर और ए ओ ये 2 संधि अक्षर इस प्रकार ये आठों स्वर अविरोध भाव से एक दूसरे के स्थान में आदेश को प्राप्त होते हैं। इस सूत्र से आदि वृद्धि रूप आ के स्थान पर अ का आदेश हो गया। प्रावचन के बदले हम प्रवचन भी कहते, क्योंकि प्रवचन में कहना है ना, इसलिए प्रावचन कहते हैं। और उसका प्राकृत व्याकरण के अनुसार उसका लोप भी हो सकता है। उन प्रवचनों अर्थात देशव्रति महाव्रति और असंयत समय दृष्टियों में जो अनुराग आकांक्षा अथवा मम इदम बुद्धि होती है उसका नाम प्रवचन वत्सलता है। वात्सल्य भाव जिसको हम कहते हैं उनके प्रति जो अनुराग जो होगा खास, उससे तीर्थंकर कर्म बनता है। इसका कारण यह है कि पांच महाव्रतादि रूप आगमार्थ विषयक उत्कृष्ट अनुराग का दर्शन विशुद्धितादिकों के साथ अविनाभाव है। अर्थात उक्त प्रकार प्रवचन वत्सलता दर्शन विशुद्धतादि शेष गुणों के बिना नहीं बन सकती, इसीलिए यह चौदहवां कारण है। अब प्रवचन प्रभावना से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। आगमार्थ का नाम प्रवचन है। देखो देखो प्रवचन के तीन अलग अलग अर्थ बताए। पहले सिद्धांत और बारह अंगों को प्रवचन कहता है, भगवान की वाणी को प्रवचन कहता। फिर प्रावचन के अर्थ में देशव्रति महाव्रति और असंयत समय दृष्टियों में अनुराग, इसको प्रवचन वत्सल कहता। और प्रवचन प्रभाव में आगमार्थ को यहाँ प्रवचन कह रहे। उसके वर्ण जनन अर्थात कीर्ति विस्तार या वृद्धि करने को प्रवचन की प्रभावना और उसके भाव को प्रवचन प्रभावनता कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आगमार्थ जो है, हमारी जो आगम है उसका नाम है प्रवचन, और उसकी प्रभावना कहना यानी उस आगम को विस्तार करना, उसका वर्णजन टीकाएं लिखना, उसको और एक्सप्लेनेटरी कर देना, या उसकी कीर्ति का विस्तार या वृद्धि करने को भी प्रवचन की प्रभावना कहते हैं। जिसको हम कहते हैं उसको प्रचार प्रसार आदि, और उसके भाव को प्रवचन प्रभावनता कहते हैं। उससे तीर्थंकर कर्म बनता है, क्योंकि उत्कृष्ट प्रवचन प्रभावना का दर्शन विशुद्धतादिकों के साथ अविनाभाव, क्योंकि ऐसी तो उत्कृष्ट समय दृष्टि को ही हो सकती है, है ना। मिथ्या दृष्टि में कहते हैं मैं कितना ही वो प्रचार करता हूँ, मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए तो ये नहीं होने वाला है। इसीलिए यह पंद्रहवा कारण है। अब सोलह नंबर का अभीक्षण अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता से तीर्थंकर कर्म बनता है। दो बार अभीक्षण का, अभीक्षण अभीक्षण का अर्थ बहुत बार है लिखा है यहाँ पर। ये अभी के बाद कॉमा आया है, वो नहीं चाहिए। अभीक्षण अभीक्षण बहुत बार ज्ञानोपयोग से भावश्रुत अथवा द्रव्य श्रुत की अपेक्षा है। उन भाव व द्रव्य श्रुत में बार बार उद्युक्त रहने से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। ज्ञानोपयोग की बात है, केवल वो तो शास्त्र ज्ञान हमने बहुत पढ़ लिया उसको अभीक्षण ज्ञानोपयोग नहीं कहा। बारंबार अपने ज्ञान स्वभाव की एकाग्रता लेना है। यानी कि ना उन भाव और द्रव्य श्रुत में बार बार उद्युक्त रहना, यानी अपने अंतरंग में स्थिरता नहीं तो बाहर आगम में रहेगा उसका उपयोग, क्योंकि दर्शन विशुद्धता के बिना इस यह अभीक्षण अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता बन नहीं सकती। इन सोलह कारणों से जीव तीर्थंकर नाम कर्म को बांधते हैं, अथवा सम्यक दर्शन के होने पर शेष कारणों में से एक दो आदि कारणों के संयोग से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है, ऐसा कहना चाहिए। उन्होंने तो एक एक कारण में सभी घटित कर दे, परंतु मूल बात क्या है, समय दर्शन होने पर फिर इसमें से कुछ कारण उसके साथ हो जाए तो उसके दर्शन ये बनती है, तीर्थंकर प्रकृति बनती है। अब कहते इसके उदय के बारे में बता रहे हैं। जस इनम तिथयरण आम गोद कम्मस्य उदयेन स देवासुर मानुषस्य लोगस्य अच्छनिज्जा पूजनिज्जा वंदनिज्जा નમન સણિજા નેદારા ધમ્મ તિથેરા જીણા કેવલીનો હવંતી. इसके उदय में क्या होते हैं वो बता रहे हैं. जिन जीवों के तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उदय होता है वे उनके उदय से देव असुर और मनुष्य लोक के अर्चनीय अर्चना करने योग्य, उसको अर्चनीय कहते हैं, पूजनीय वंदनीय नमस्करणीय नेता और धर्म तीर्थ के कर्ता जिन व केवली होते हैं. सूत्र में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का यहाँ उदय और उससे इन दो पदों का अध्याहार करना चाहिए, अन्यथा अर्थ की उपलब्धि नहीं होती. जिसके अर्थात जिन जीवों के यह अर्थात इस तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उदय होता है वे उसके उदय से देव असुर एवं मनुष्यों से परिपूर्ण लोक के अर्चनीय होते हैं ऐसा संबंध करना चाहिए. यानी तो पूज्य होते हैं, अर्चना के योग्य होते हैं. चरु बलि पुष्प फल गंध धूप दीप आदि कौन से अपनी भक्ति प्रकाशित करने का नाम अर्चना है, यानी अष्टद्रव्य से पूजा. इनके साथ बलि का ही अर्थ एक्चुअली पूजा होती है, उसमें तो वो तो चावल वगैरह भी लेना. चरु तो लिया है नैवेद्य, फिर चावल भी लिया, पुष्प फल गंध धूप दीप. नहीं नहीं चावल होगा, अक्षति होता है. चरु है नैवेद्य, गंध तो ले लिया है, जल को अलग से नहीं लिया उन्होंने. चरु बलि पुष्प फल गंध धूप दीप आदि में वो ले लेना. हाँ पुष्प भी ले लिया, ये सब प्रासुक होने चाहिए. इनके साथ इंद्रध्वज कल्पवृक्ष महामह और सर्वतोभद्र इत्यादि महिमा विधान को पूजा कहते हैं. या इंद्रध्वज विधान वगैरह जो इंद्रों द्वारा होते हैं ना वो विधान. हाँ पूजा. हाँ अष्टानिका में होते हैं वो. आप अष्टकर्मों को नष्ट करने वाले महामय, ये सारे विधान है अलग अलग, ये सर्वतोभद्र विधान है, ये सब है. हाँ. विधानों के नाम विधान है. हाँ किसमें सिद्ध चक्र विधान वगैरह, इसमें अलग अलग विधानों की बात है. यहाँ प्रस्तावना में जो पूजन के लिए प्रासुक अष्टद्रव्य वगैरह इन्होंने एक बड़ा पाठ लिखा है. यानी जो सभी जो चर्चा इंद्रध्वज अष्टानिक कल्पद्रुम सदार्चन चतुर्मुख पूजाओं से है वो सर्वशक्तिमान इंद्रगण देवगण पुराण पुरुष चक्रवर्ती और मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा दिव्य निर्जंतुक सामग्री से की जाती है. क्योंकि उसमें लिखा भी है, पढ़ते भी हम अकृत्रिम चैत्यालयों के अंत में, चौव्या देवा सपरिवारा, यानी चतुर्विध देव स्वयं पूजा करते हैं परिवार सहित, किसके द्वारा, दिव्य गंधेन दिव्य पुष्पेन, यानी दिव्य पुष्पों से, दिव्येन चुन्नेन दिव्येन धुवेन दिव्येन वासेन दिव्येन नानेन निच्चकान मच्छन्ति पूजन्ति वंदन्ति नमस्सन्ति अहमवि इह संतो तत्थ संताय निच्चकान मच्छमि पूजमि वंदामि। यानी पर देव जो है वो कल्प वृक्षों से प्राप्त दिव्य सामग्री से पूजन करते हैं, ये उसका अर्थ है। हाँ, यहाँ ये बात हुई थी, आप अष्टकर्मों को नष्ट करने वाले, केवल ज्ञान से समस्त पदार्थों को देखने वाले, धर्मोन्मुख शिष्टों की गोष्ठी में अभयदान देने वाले, शिष्ट परिपालक और दुष्ट निग्रहकारी देव है, ऐसी प्रशंसा करने का नाम वंदना है। हमने वंदना में देखे ना, अलग अलग उनके नाम लेकर उनके गुणों की अलग अलग बोल कर कहना, वो है वंदना। पांच मुष्टि अर्थात अंगों पांच द्वारा भूमि को स्पर्श करते हुए जिनेन्द्र देव के चरणों में पड़ने को नमस्कार कहते हैं, जिसको हम पंचांग नमस्कार कर देते हैं, पांच अंग टेक कर जमीन पर। हाँ, वे हो गए, पांच मिनट रह गए। धर्म का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। क्या लिखा, धर्म किसको कहना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को धर्म कहा। इनसे संसार सागर को तरते हैं, इसलिए इन्हें तीर्थ कहा जाता है। धर्म और तीर्थ के कर्ता जिन केवली और नेता होते हैं, मैंने धर्म कहा सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र को। पेज नंबर 92 लास्ट, फिर पढ़ते देखो, धर्म का अर्थ क्या है, सम्य दर्शन सम्य ज्ञान और सम्यक चारित्र, और इनके द्वारा संसार सागर को तरते, इसलिए उन्हें तीर्थ कहा जाता है। और जो धर्म और तीर्थ के कर्ता है जिन केवली और नेता होते हैं, इस तरह से ये तीर्थंकर का अर्थ यहाँ बता दिया। अब 93 पेज में आते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा, हाँ, सभी प्रकृतियों का बंध, यानी कहाँ से कहाँ तक, ये तो प्रश्न था, उसमें सभी में हमने 23 उसके प्रश्नों के उत्तर देखे। ज्ञानावरण से शुरू किया था, पांच ज्ञानावरण के साथ जो 10वें गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होती उसकी बात पहले बता दी। उसमें चार दर्शनावरण आए थे, पांच अंतराय आए थे, तो दर्शनावरण चार हो गए। दूसरा कर्म दर्शनावरण है, ये दर्शनावरण के बाकी जो बचे हुए त्यांग वृद्धि उसका फिर नंबर लिया, उसके साथ बाकी भी सभी टोटल 25 प्रकृतियां बता दी। उसके बाद नंबर किसका रहा, वो स्थान वृद्धि वहां ही निद्रा प्रचला रही थी, इसलिए 8वें गुणस्थान की बंध विच्छित्ति वाली प्रकृतियां निद्रा एक अकेली रही थी वहां पर, उसको लिया, तो दर्शनावरण पूरे हो गए। तीसरा कर्म वेदनीय वाला होता है, तो साता वेदनीय जो 13वें में विच्छित्ति होती उसकी बात की उन्होंने, फिर असाता रह गया वो 6ठे में विच्छित्ति होती उसके साथ, और सब टोटल 6 प्रकृतियां वहां बताई, तो वेदनीय हो गया। फिर मोहनीय का नंबर, मुनि में से तो हमने अनंतानुबंधी वगैरह वगैरह को कह दिया है, अब मिथ्यात्व को लेना है, तो मिथ्यात्व आदि जो 16 प्रकृतियां है उसकी बंध विच्छित्ति की बात की उन्होंने, उसके में वो नपुसक वेद भी ले लिया उन्होंने। जहां अन्य भी प्रकृतियां जहां जहां चलती गई वो उसको तो हम निकालेंगे, मोहनी की जो जो रहेगी उसकी बात करेंगे। मोहनी में से मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी गया, नपुसक वेद गया, श्रीवेद गया, तो अभी बाकी जो बची उसकी अप्रत्याख्यान, फिर 4थे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति बताई, 10 प्रकृतियों की बात की, मनुष्यायु को अलग से बताया उन्होंने, 9 को अलग और मनुष्यायु को अलग से बताया, फिर अप्रत्याख्यान 5वें गुणस्थान की बात की, फिर पुरुष वेद और संजवलन को ले लिया उन्होंने, बाकी नपुसक वेद और वो तो चले ही गए थे पहले ही थे। इस तरह से उसकी बात हो गई। हाँ, फिर बाद में नामकर्म आ गए, नहीं आयु हो गए ना, बीच में आयु था, मोहनी के बाद आयु था, उसमें से दो आयु की बात ऑलरेडी बता चुके थे, किसकी, तीर्यंचा और नरक आयु, अब दो बचे थे, मनुष्यायु और देवायु। मनुष्यायु और देवायु को बता दिया उन्होंने, तो आयु हो गए, फिर नाम कर्म लिया, नाम कर्म में नरक गति तीर्य गति ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर देव गति ले लिए, मनुष्य गति, मनुष्य गति की भी बात चौथे में हो गई थी। तो देव गति के साथ जो बंध विच्छुति होती है आठवें गुणस्थान के छठे भाग में, उसमें से आहारक और तीर्थंकर को छोड़कर बाकी सब प्रकृतियां वहां ली थी। आहारक की बात अलग से बताई, तीर्थंकर की बात अलग से बताई, और गोत्र तो आ ही चुके थे, उच्च गोत्र तो ज्ञानावरण के साथ आया था, नीच गोत्र तो दूसरे गुणस्थान में आया था, अंतराय भी पहले आ गए थे। तो सभी प्रकृति इस तरह से हमने देख ली। ये तो यहाँ तो बात हो गई किसमें, गुणस्थानों में देखा हमने, गुणस्थानों की अपेक्षा बात की। अब अलग अलग गतियों में उसकी कुछ विशेषताएं होती है, मूल विमारगणाओं में जैसे वो बांधते कितनी प्रकृतियां हैं उसमें से वो, और गुणस्थान कितने हो गए उस मारगणा में, ये सोचना है। जैसे नारकियों में देखना है तो गुणस्थान तो चार है, नरक मारगणा जो है, नारकी की गति मारगणा जो है, उसमें गुणस्थान चार हो सकते हैं, पर वो कौन सी प्रकृतियां बांधती है उसमें से वो बंध विच्छित्ति आदि कहेंगे कि नारकी जो जीव है ना, देवगति बांधते हैं ना, नरक गति बांधते हैं ना, सूक्ष्म साधारण एकेंद्रीय वगैरह प्रकृतियां बांधते हैं, जो बनती है उसमें से कुछ विशेषताएं बताएंगे, इसको कहेंगे मारगणा की विशेषताएं। जैसे हमने गुणस्थानों में चौथे गुणस्थान तक वो मनुष्य गति वगैरह बांधती कहते ऐसा कहा था वहां पर। अब मनुष्य की मारगणा आएगी, तीर्यंचे की मारगणा आएगी, तो उसमें से दूसरे गुणस्थान तक ही बनती है, ये जो विशेषताएं है वो यहाँ पर बताई जाएगी, इसको कहेंगे मारगणा की अपेक्षा। कल से ही शुरू करते हैं इसको, क्योंकि अभी एक दो वाक्य भी नहीं पढ़नेंगे हम, और बड़ा है ये सूत्र भी बड़ा है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत